ओम शांति। जो कल चलने वाली संडे की मुरली है उस स्लोगन के ऊपर बोलना है। जो स्लोगन है, सर्व आत्माओं प्रति शुद्ध संकल्प करना ही वरदानी मुहूर्त बनना है। तो बाबा कहते हैं शुद्ध संकल्प, हर चीज की शुद्धता का एक पैमाना या मापदंड होता है। उस शुद्धता से गुजारा जाता है तभी उसे शुद्ध माना जाता है। जैसे कोई पानी है, पानी है लेकिन उसकी शुद्धता की पहचान होती है। पानी तो सभी जगह होते हैं, सागर में भी पानी होते हैं, तालाब में भी होते हैं, झरनों में भी होते हैं, लेकिन वो शुद्ध है इसकी पहचान होती है। जो उसकी मापदंड होती है वो पीएच मान होता है, उसका सेवन होता है, तो उससे मापा जाता है, तो ही उसकी शुद्धता की पहचान होती है। अगर वो पानी शुद्ध नहीं है, अगर उसे हम पी लेते हैं, तो पीने से जो हमें बहुत सारी बीमारियां होने की संभावना होती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं हमारे संकल्प शुद्ध हो तभी हम वरदानी मूर्त बन सकते हैं। बाबा कहते हैं संकल्प ही वो शक्ति है जिससे जीवन चलता है। अगर संकल्प नहीं तो जीवन नहीं। हर चीज के लिए एक संकल्प की आवश्यकता होती है। सवेरे उठना है, उसके लिए भी हम पहले रात से ही तैयारी करते हैं कि हमें सवेरे इतने बजे उठना है। अगर वो संकल्प ही मन में नहीं है तो हम उठ नहीं सकते। हम सोचेंगे ठंडी है या बरसात है या फागी है। तो इस तरह से हमारे संकल्प में प्योरिटी होनी चाहिए, तभी हम उस वरदानी मुहूर्त बन सकते हैं। तो बाबा कहते हैं हमारे शुद्ध संकल्प ऐसे हो जो हमारे लिए भी हो और वो दूसरों के लिए भी, जैसे एक एक बोल हमारे वरदान हो। तो बाबा कहते हैं कि इसमें जो हमें क्या चाहिए, शुद्ध संकल्प चाहिए। तो संकल्प की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो बाबा कहते हैं जो हम देखते हैं, सुनते हैं या बोलते हैं या पढ़ते हैं, उन सब से हमारे संकल्प इकट्ठा होते हैं। जैसा सुनेंगे बोलेंगे, जैसा संग होगा, उस तरह से हमारे जीवन में संकल्प आता है और उसी संकल्प के आधार से हमारे जीवन का निर्माण होता है। इसीलिए हमें क्या बनना है तो उसके आधार से हम संकल्प भी सोचते हैं, और किस व्यक्ति का चयन, किसके साथ रहने से हमारी स्थिति ऊपर होती है या नीचे होती है, उनके विचार कैसे, उनका व्यवहार कैसे है, उनकी दिनचर्या कैसी है, उस तरह के लोगों का हम चयन करते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारे लक्ष्य के विरुद्ध हमारे कर्म है तो हम उस कर्म को छोड़ते जाते हैं। चाहे व्यक्ति हो, व्यक्ति को हम देखते हैं कि ये इसका लक्ष्य कुछ है और हमारा लक्ष्य कुछ है, तो हम उस व्यक्ति से दूरियां बना लेते हैं कि हमारे और आपकी दोस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि जीवन का लक्ष्य ही अलग है, इसलिए हम उससे दूर हो जाते हैं। वैसे अगर हम जीवन में क्या बनना चाहते हैं उस अनुसार हम बुक भी पढ़ते हैं, क्योंकि हमें ऐसा बनना है ताकि उससे हमें प्रेरणा मिले और हम भी इस पथ पे अग्रसर हो सके। या कुछ सुनना है या कुछ देखना है तो हम उसी चीज को ज्यादा बार बार देखते हैं जिसे हम बनना है, क्योंकि देखने से ही ज्यादा हमारे जीवन में प्रभावित होते हैं, क्योंकि देखने से 3D बन जाता है हमारे पिक्चर, वो ब्रेन में छप जाता है, उसको भूलना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए पिक्चर दिखाया जाता है, कोई भी चीज बनाने की लाइव, जो चीज बोलने से समझ नहीं आती वो चीज को हमें दिखाया जाता है। कोई भी चीज की हम ट्रेनिंग लेते हैं तो लेक्चर के बाद उसको प्रैक्टिकल में करके दिखाया जाता है ताकि वो क्लियर हो सके कि हम कैसे बने। तो बाबा कहते हैं हमें पवित्र बनना है, तो बाबा कहते हैं तो हमें बाबा ने प्रैक्टिकल उदाहरण दिखाया कि ब्रह्मा बाबा की कैसे हम ग्रस्त व्यवहार में रहकर भी पवित्र बन सकते हैं। ऐसे कि नहीं हम संन्यास ले लें, जंगल में जाकर तपस्या करें। तो बाबा ऐसे ऐसे उदाहरण हमें देते हैं जिससे हम प्रैक्टिकल में ला सके अपने लाइफ में। उसके लिए बाबा हम कहते हैं कि जो भी बाबा ने हमें दिनचर्या दी है वो एक फिल्टर की तरह है हमारे जीवन में, जिससे हम अपनी अशुद्धियां को निकाल सकते हैं। हम सभी के अंदर बहुत सारी कमजोरियां थी, लेकिन बाबा ने उस कमजोरियों को ना देखते हुए हमारी कोई ना कोई विशेषता को देखे और एक दिनचर्या हमें दी बाबा ने बना के। उस दिनचर्या के अनुसार अगर हम चलते हैं तो हमारे जीवन की जो भी अशुद्धियां हैं या इम्प्योरिटी है या व्यर्थ है, वो सब हमारी निकलते जाती है। और जितना जितना हम बाबा के श्रीमत है उसको पालन करते हैं तो हमारे जीवन में वो श्रेष्ठ संकल्प का आगमन स्वतः ही आते जाता है, और वही श्रेष्ठ संकल्प हमारे लिए वरदानी मूर्त अपने लिए व दूसरों के लिए। जैसे एक बार सूरज भाई जी अपना क्लास में अनुभव सुना रहे थे, कोई माता जी ने उसको फोन किया था कि ये सब प्रॉब्लम चल रहा है, तो सूरज भाई ऐसे ही बोलते कि बाबा को भोग लगाकर भोजन कराओ जो परिवार में समस्या चल रही। तो ऐसी मन से बोल दे, बोलते हो उतना सोचा नहीं, ध्यान भी नहीं दे। तो उस माता जी ने वैसे ही करने लगा कि बाबा को भोग लगाकर भोजन देने लगा परिवार। तो उनकी जो प्रॉब्लम थी घर की वो सारे ठीक हो गए। फिर फोन करके उसने बताया सूरज भाई को कि भाई जी जो आपने कहा था वो तो सच हो गया, और जीवन की जो प्रॉब्लम थी घर की वो सब ठीक हो गए। तो सूरज भाई ने बोला मैं तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो उसके प्रश्न को भी अच्छे से सुना नहीं, लेकिन मैंने ऐसे ही बोल दिया। तो जब हमारे संकल्प शुद्ध हो जाते अपने लिए और दूसरों के लिए, तो हमारे एक एक बोल वरदानी हो जाते, वो हमें खुद भी नहीं पता चलता कि हम क्या बोल रहे हैं। तो ऐसे अगर हम शुद्ध और प्योर मन रहेगा जी, तो वही शुद्ध संकल्प, शुद्ध संकल्प अब जब हमारे मन में हो गया तो ही हम जो भी हमारे मुख से बोल निकलेंगे वही वरदानी होंगे। नहीं तो हम सोचते हैं कि हमने गलत बोल दिया या अच्छा से नहीं बोला, क्योंकि हमारे मन में शुद्ध नहीं है। शुद्ध ना होने के कारण हमारे बोल में प्योरिटी नहीं रहती है, और उसके कारण ही हमारे बोल दुखदायी हो जाते हैं, और दुख होने के कारण ही समस्या विघ्न बन जाते हैं। इसलिए बाबा ने जो हमें दिनचर्या दी है उसी दिनचर्या के अनुसार अगर हमारे हरेक बोल और कर्म और व्यवहार रहते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए वरदान बन जाती है, और दूसरे के लिए हम वरदानी मूरत बन जाते हैं। तो इस तरह से बाबा ने हम बच्चों के लिए संकल्पों की शुद्धि के लिए विशेष और हर दिन बाबा मुरली चलाते जिसका हम मनन चिंतन कर सके, और उसके आधार से ही हमारे अन्य दिनचर्या जो आगे वाली सवेरे से शुरुआत होने वाली दिनचर्या है उसको हम श्रेष्ठ और महान बना सके। क्योंकि हमारा लक्ष्य है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। जब तक हमारे संकल्पों में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, और संकल्प ही हमारे जीवन को श्रेष्ठ और महान बनाते हैं। इसलिए जो भी बाबा हमें ज्ञान देते हैं और जो संकल्प देते हैं श्रेष्ठ, उस संकल्पों को ही हमें रियलाइज करना है कि उसे हम रियल लाइफ में कैसे लाएं। जब तक उस संकल्प को रिफाइन नहीं करेंगे तब तक वो हमारे रियल लाइफ में नहीं आ सकते। ओम शांति। दूसरों के प्रति जब तक हमारे मन में शुद्ध संकल्प नहीं होगा तो दूसरों के प्रति कैसे चलेंगे। जैसे किसी, हम हर दिन ज्ञान योग करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति आता है और हमारी इंसल्ट कर देता है, तो हमारी व्यर्थ संकल्प या शुद्ध संकल्प पूरा बाहर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमने उस सबको अपना नहीं माना। जहाँ अपनापन होता है हम उसके लिए अशुद्ध संकल्प नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि हम सबको अपना मानते हैं। हम लौकिक में भी देखते हैं, हम सब रह चुके माता पिता भाई बहन, वो कितनी भी गलती करें हम डांटेंगे धमकाएंगे, लेकिन अशुद्ध कभी उसके कल्याण के बारे में नहीं सोच सकते कि उसका कुछ हो जाए, अहित हो जाए, वो जीवन में आगे ना बढ़ सके, असफल हो जाए। हम उसको माफ कर देते, डांटेंगे, बाद में भी उसको समझाते भी हैं कि ये गलत है। लेकिन अगर हमारी कोई इंसल्ट कर देता है, या कोई हमारी ग्लानी करता है, या कोई हमारे ऊपर आरोप लगाए, तो हमारे मन में एक बदले की भावना हो जाती, क्योंकि हम उसे अपना नहीं मानते। बाबा भले कहते हैं कि हम सब आत्मा ब्राह्मण आत्मा आपस में भाई बहन है, लेकिन वो भावना अभी तक हमारे क्रिएट नहीं हुई, क्योंकि मन में अशुद्धियां हैं, विचार है, क्योंकि हमारे कर्म का हिसाब किताब है, हम ऐसे कहते हैं। क्योंकि क्यों अशुद्धियां है, क्योंकि हम उसे अपनेपन की फीलिंग नहीं है हमारे अंदर उसके प्रति, इसलिए हमारे अंदर वो बदले की भावना और मौके की तलाश रहती कि कब हम इसे बदला लें। तो इस कारण हम शुभ भावना क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि बदले की भावना है तो शुभ भावना हम क्रिएट कर ही नहीं सकते। उसे जब भगवान उसे अपना माना है और भगवान ने कहा कि ये तुम्हारा भाई है, तो हम उसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हर समय हमारी ग्लानी करता है। लेकिन हम जब छोटे होते हैं तो हमारे मम्मी पापा जो होते हैं बताया जाता है कि ये तुम्हारा भाई है या बहन, तो हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि हमने भी उसे माना है कि हाँ सच में मेरा भाई है, भले वो हर समय हमारी ग्लानी करता हो, फिर भी हम उसे शुभ भावना ही देते हैं, क्योंकि हमें सिखाया है कि ये तुम्हारा भाई है। उसी प्रकार बाबा कहते हैं कि ये सर्व ब्राह्मण आत्मा है, तुम्हारे भाई बहन है, फिर भी हमारे मन में, क्योंकि प्रतिस्पर्धा है हमारे जीवन में, हम उससे आगे जाना चाहते हैं या वो हमारी टांग खींचा करता है। कई बार हम कहते हैं हम बदले की भावना नहीं है हमारे अंदर, लेकिन फिर भी हमारे मन में उनके प्रति अशुद्धियां हैं, और इस कारण से हम जो शुद्ध संकल्प उस आत्मा के लिए प्रति चाहिए वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि अपने फन की फीलिंग नहीं है, और हम कितने सारे गलतियां करते फिर भी बाबा हमारे लिए शुद्ध संकल्प ही क्रिएट करते, क्योंकि पास अपने फन की भावना है। वो जानते हैं कि यही वो आत्मा है जो मेरे सेलेक्टेड आत्मा है। चले 50 गलती करते हैं हम बाबा के बच्चे बनने के बाद, फिर भी बाबा कहते हैं कि ये मेरा ही है, और मेरा होने के कारण उसे माफ कर देते हैं और उसके दूसरा गाइडलाइन देते हैं बाबा। ताकि आत्मा स्वीकार कर सके, तभी हमारे मन में उस शुद्ध भावना क्रिएट हो सकती। जब तक हम किसी को अपना नहीं समझते तब तक वो भावना बदलती ही नहीं, और भावना ना बदलने के कारण हमारे मन की वरदानी मूर्त जो बाबा ने कहा वो शुद्ध नहीं हो सकती। इसलिए बाबा ने जो कहा है कि पहले उसको अपना मानो, अपने जैसे बाबा का ज्ञान मिलता हम बाबा को अपना समझते, इसलिए जो भी बाबा कहते हम करना शुरू करते। तो अगर हम बाबा को अपना ही नहीं माने तो जो भी बाबा कहेगा हम नहीं करेंगे।
सामने वाले ने भी तो अपना मानना चाहिए
जी, सामने वाला, लेकिन ज्ञान उसके पास, ज्ञान की प्रॉब्लम है ना, उसके पास ज्ञान कम है, ज्ञान बहुत है लेकिन वो मानता नहीं ना ये मेरा अपना है, क्योंकि उसको तो ये पता है कि मेरी पोजीशन जा रही है। जैसे कोई कोई चीज में, कोई फील्ड में हम जाते हैं तो ऑलरेडी हमारा पद फिक्स होता है, लेकिन उससे हायर एजुकेशन वाले अच्छे योग्य व्यक्ति आते तो उसको भय उत्पन्न होने लगता है कि अब मेरी पद खिसकने वाली है, तो क्योंकि अब अपना नहीं मान, क्योंकि उसको पता है कि अब मेरा मान सान जाने वाला है, तो जो उसको मिल रहा था पहले से अब उसको नहीं मिल रहा है, तो उसको लगता है कि अब मुझे मेरी योग्यता कम हो गई, मुझे लोग पूछेंगे नहीं, अब मुझे झुक के चलना पड़ेगा, भले मेरे से छोटे हैं लेकिन इसके सामने में झुके हो। वो हमें अपना नहीं मारा लेकिन हम तो अपना मान सकते हैं ना, फिर तो वही बात है ना, उसमें और हमें क्या फर्क रही, तो वो भी जैसा हम भी वैसे हैं। तो इस प्रकार से जब हमें ज्ञान है तो हमें ही झुक के चलना चाहिए। इसलिए हमेशा जो कहते हैं घर के बड़े होते उसको ही समझाया जाता, छोटों को नहीं समझाया। तो उसी प्रकार बाबा कहते जितना हमारे अंदर ज्ञान है वही व्यक्ति झुक के चल सकता है, और उदाहरण भी देते हैं जिस फल में जितना, जिस पेड़ में जितना फल होता है वही उतना ही झुकता है, और सूखे पेड़ तो अकड़ के ही चलता है, और एक दिन वो टूट के गिर जाता है तो उसको आग में जला दिया जाता है, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। फल ही जो होता है उसको तोड़ के दूसरों को दिया जाता है जिससे उनका हेल्थ स्वस्थ रहे। तो उसकी ज्ञान के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने उसके जीवन में ज्ञान कितना उतरा है, बाकी तो हर कोई अपना सोचता है कि मैं राइट हूँ, मैं राइट हूँ, मैं राइट हूँ, इसी के कारण ही जीवन में टकराव होता है। हर व्यक्ति कहता है कि मैं राइट हूँ, इसी कारण ही सबसे ज्यादा जीवन में आज विघ्न है, और वही कहता है ओम शांति।
ओम शांति। तो 25/12/83 की मुरली है। तो मेथड का नाम अभी रिसर्च कर रहे हैं, उस मेथड का क्या नाम रखा जाए, मिस इंटरप्रिटेशन, अंडरस्टैंडिंग, या अर्थ का अनर्थ करना, अर्थ को नहीं समझना, उल्टा अर्थ ले लेना। तो ये मुरली का जो हेडिंग है, संगम युग है, बड़े ते बड़े दिन, मौज मनाने के दिन। कुछ एक बातें इस मुरली में हैं जिनका हम अर्थ से अनर्थ ले सकते हैं, लेकिन वो लेना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम उसको समझ नहीं पाते तो फिर ले लेते हैं। तो इसमें एक जो पहली बात है, बाबा ने दो बातें बताई हैं। ये क्रिसमस के दिन की मुरली है 25 दिसंबर की, तो उसमें विदेशी भाई बहन आए हैं, तो बाबा ने क्रिसमस ट्री के बारे में बताया है और दूसरी तरफ कंपैरिजन किया कल्प वृक्ष का। तो इसमें कहा है जैसे क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है लाइट से, उसी तरह तुम बच्चे भी कल्प वृक्ष को सजाते हो, कौन सी लाइट से, तुम आत्माओं की जगमगाती ही ज्योति है, उससे वो वृक्ष जो है जगमगाता है। तो हम इसका उल्टा अर्थ ये लेते हैं कि क्रिसमस ट्री हम साज सज्जा या डेकोरेशन में लग जाते हैं, डेकोरेशन ज्यादा करते हैं, लेकिन पहले के टाइम में ये भी सुनने में आता है कि पहले जब दादियां या पुराने जो पुरुषार्थ के प्रेमी थे, तो यथार्थ प्रेमी, तो जो मना एकदम दिल से गहराई से पुरुषार्थ करने वाले, तो जब भी उत्सव त्योहार या पर्व आते थे तो उन दिनों में भट्ठी चला करती थी, भट्ठियों को प्राथमिकता दी जाती थी, त्याग तपस्या के ऊपर क्लासेज होती थी, वैराग्य के ऊपर क्लासेज होती थी। लेकिन अभी समय अनुसार देखा गया है उसमें काफी सारा परिवर्तन आ गया हुआ है। अभी बाहर की डेकोरेशन ज्यादा होती है लेकिन आंतरिक डेकोरेशन कम हो जाती है, जिसके कारण फिर अनेक समस्याओं का समाधान करने के लिए इधर उधर हम सबको झांकना पड़ता है। हम अपने जीवन में अनेक मुसीबतों को फिर मोल ले लेते हैं, फिर जीवन में चिंता दुख टेंशन आ जाता है। तो वो डेकोरेशन के बजाय बाबा ने कहा कि अब एक कल्प वृक्ष डेकोरेशन, अर्थात हम संसार की आत्माओं को बाबा के ज्ञान के श्रृंगार से कितना श्रृंगारित कर रहे हैं, उनको हम कितना लाइट माइट दे रहे हैं, कितना उनको हमारे से प्राप्ति हो रही है, तो ये उल्टा अर्थ हम ले लेते हैं, बाहर की सांस जब मेजबान हम लगे हो उसमें, लेकिन आंतरिक हमारी कितनी सजावट है। इसी संदर्भ में बाबा ने एक दूसरा सेंटेंस कहा, ब्रह्मा भोजन और आत्मा का भोजन। बाबा ने कहा खूब खाओ पियो, बड़े से बड़े दिन हैं, तो ब्रह्मा भोजन खाओ पियो, खुशी में गाओ गीत गाओ और ब्रह्मा भोजन खाओ, लेकिन साथ में बताया मन का भोजन, आत्मा का भोजन। तो हम आत्मा के भोजन को छोड़ के ब्रह्मा भोजन की तरफ टेस्ट उसको बढ़ाने के संदर्भ में हमारा टाइम चला जाता है, जबकि आत्मा का भोजन हम सारी जो ईश्वरीय महावाक्य हैं वो हमारे जीवन में हम उसका कितना मनन चिंतन कर रहे हैं, कितना उसका फायदा ले रहे हैं, कितना आत्मा उससे तंदुरुस्त बन रही है, कितना उससे सुख प्राप्त कर रहे हैं। तो आत्मा का भोजन क्या है और ब्रह्मा भोजन क्या है, तो हम आधा सेंटेंस छोड़कर आधा ले लेते हैं तो भी ये अर्थ का अनर्थ हो जाता है, फिर जीवन में उमंग उत्साह नहीं रहता है, निराशा के बादल हमारे जीवन में मंडराते रहते हैं। तो ये दूसरा सेंटेंस था। फिर नेक्स्ट है, एक है बाबा ने कहा खूब मौज मनाओ लेकिन मन की मौज मनाओ। तो मन की मौज हम किस तरीके से मनाते हैं, और जो बाबा ने दूसरी कही हद की जो मौज है वो ना करके मन की मौज। तो मन की मौज अर्थात ज्ञान रत्न से हम कितना खेल रहे हैं। खेल के बारे में बाबा कहते हैं कई बारी खेलो कोई बात नहीं, लेकिन हम बाबा का उदाहरण देना शुरू कर देते कि बाबा तो भी खेलते थे, लेकिन वो समय कुछ और था और बाबा थे वो, और उस समय स्वयं सुप्रीम अथॉरिटी उनके अंदर में थी, लेकिन हम उस चीज को नजरअंदाज करते हुए हम दूसरी बातों में अपना खेल पाल करते हुए अपने समय को भी नष्ट कर देते हैं। ज्ञान योग के टाइम में नहीं खेलना है, लेकिन वास्तव में अब तो सारा जीवन ही ज्ञान योग का रह चुका है, क्योंकि उस समय जो है ना कहा जाता बहुत कम है, और उस समय तो बाबा जानते थे इतने साल चलने वाले हैं, हमको नहीं पता था, लेकिन अभी समय और परिस्थितियों को सामने देखते हुए हम देख रहे हैं समय कितना तीव्र गति से भाग रहा है। जो बाबा कहते हैं कभी कभी समय पीछे मुड़ मुड़ कर आपको देख रहा है कि मेरे रचना कहाँ पहुंचे, रचना कहाँ पहुंचे है, समय आपकी रचना है, वो पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा है कि मेरे रचना कहाँ है। तो समय अभी पहले वाला रहा नहीं, अभी मालिक कहाँ है। तो ये था एक समय के बारे में। दूसरा एक ड्रामा के बारे में, तीन चार बातें अभी और ड्रामा के बारे में। ड्रामा को बाबा कहते कभी कभी उल्टे रीति से, देखे ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा में होगा तो हमारे नसीब में होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, तो हम ड्रामा को अपनी ढाल बनाकर जो ब्राह्मण जीवन की परंपराएं हैं मर्यादाएं हैं उनको ताक में रखकर भी हम अपने को निश्चिंत कर देते हैं। जैसे हम अपने मन के ऊपर एक पर्दा डाल देते हैं और फिर अपनी कमी कमजोरियों को छिपाने के लिए अनेक प्रकार के इस तरह बाबा के महावाक्यों को ढाल बनाकर अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारी कमी कमजोरियां दूसरों के सामने प्रत्यक्ष ना हो, बल्कि हम उन कमी कमजोरियों के आधार पर ही हम झूठा नाम मान शान या झूठी खुशी प्राप्त करने के प्रयास में अपना समय नष्ट करते रहते हैं। फिर बाबा कहते पैसा है। अब पैसे के बारे में कुछ दिन पहले मुरली चली थी, पैसे के बारे में बाबा ने बताया था कि पैसा है तो घूमो फिरो विदेश जाओ, लेकिन ये भी तो कहा है कि पैसा है तो आप लाड़काना लाहौर में पाकिस्तान में, तो पैसा है तो बाबा ने कहा खाओ पियो घूमो फिरो विदेश जाओ, लेकिन ये भी तो कहा है बाबा ने कि पैसा है तो आप सेंटर खोलो, गीता पाठशाला खोलो, कहां जिसकी मददगारी करनी है वो करो। तो हम उल्टे तरीके से लेते हैं, तो हम कितना जमा कर रहे हैं, तो अगर हम उस जो बाबा कहते बाबा का बनने के बाद सब उसका हो गया, जो पिछले संडे की मुरली थी अमानत समझो, हर चीज को अमानत समझो, तो हम क्या सचमुच उसको अमानत समझ रहे हैं, उसको क्या ख्यानत, उसकी अमानत में ख्यानत कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम एक गलती करते हैं तो उसके उस गलती को पूरा ब्राह्मण संसार देख रहा है, और जो आत्माएं उसमें कमजोर हैं तो उसका जो बोझ है वो हमारी जो कर्म को देखकर उसका बोझ भी हमारे ऊपर चढ़ जाएगा। तो हम कैसे पैसे को किस तरीके से यूज कर रहे हैं? तो फिर बाबा कहते हैं चलते फिरते योग करो, सोते सोते भी योग कर सकते हो। तो हम उसको छोड़ देते हैं, तो कोई बात नहीं, थोड़ा मौसम का प्रकोप हुआ या मौसम ऊपर नीचे हुआ या थोड़ी छोटी मोटी बीमारी हुई तो भी हम छोड़ देते हैं। लेकिन प्राय देखा गया है अगर छोटी मोटी बीमारी या कोई भी बीमारी होती है अगर हम दिनचर्या को अनुशासित रूप से चलाते हैं तो बहुत सारे जो बताया श्री अपना हरिभाई ने, तो वास्तव में वरदानों का समय उसमें अनुभव, वरदान उसमें अनुभव होता है कि सचमुच बाबा हमारी मदद कर रहे हैं। अगर हम उठने लायक भी नहीं है तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमने भी एक आधी बार अनुभव किया हुआ है। एक बार बहुत सारा बुखार था, बहुत सारा माना अनलिमिटेड जो सहन करने योग्य नहीं होता है, तो उस दिन हम नहीं आ पाए। पहले जिस दिन कम था उस दिन आ पाए हम अमृत पहले, लेकिन जिस दिन बहुत बुखार था तो आ नहीं पाए। बहुत साल पहले की बात है, विशाल भवन में 99 की बात, तो हम नहीं आ पाए। लेकिन हमने उसमें पूरा ऐसा फील किया कि मैं वहां हुई नहीं, मैं मेडिटेशन हॉल में हूं जहां योग करते चारों धाम की परिक्रमा करके वहां वापस पहुंचा। पूरा एक्यूरेट उसमें वो अनुभव किया सारा। तो बाबा भी समय पर मदद करता है, लेकिन हमको ऐसा भी नहीं है कि रोज रोज वही बाबा अनुभव कराए कि मैं खटिया भरी सोया रहा हूं, तो वो भी ऐसा नहीं, उसका हम उल्टा अर्थ तो ले सकते हैं। तो माना समय अनुसार अगर हम चलते फिरते योग तभी कर सकते हैं अगर हमको बैठे बैठे आदत है। तो पहले से हमको इन चीजों को सामने रखते हुए अपने जीवन के प्रति सचेत रहते हुए बाबा के ज्ञान को उल्टे अर्थ से उसका अर्थ नाश करते हुए दूसरों के लिए हम ऐसा कुछ ना कर दे कि दूसरा भी पाप करे और वो पाप का बोझ भी हमारे ऊपर चढ़े और हम इस जीवन में भी आगे ना बढ़ सके। एक सच्ची खुशी जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो उससे हम वंचित ना रहे। ओम शांति।
ओम शांति। मुरली का सेकंड भाग अव्यक्त महावाक्य है, जिसमें बाबा ने विशेष वृत्ति के ऊपर कहा है कि आपकी वृत्ति कैसी हो वो वृत्ति आपके जीवन में या अन्य आत्माओं के जीवन में कैसे श्रेष्ठ कार्य करता है करती है, वृत्ति से क्या क्या फायदे हैं, वृत्ति से आप कैसे संसार की सेवा कर सकते हो। तो मुरली में 5 पैराग्राफ है। फर्स्ट पैराग्राफ में बाबा ने कहा कि आपकी वृत्ति बहुत तीव्र गति से सर्विस कर सकती है, आपकी वृत्ति बहुत तीव्र गति से वाइब्रेशंस फैलेंगे, आपकी वृत्ति से वायुमंडल पावरफुल बनता है बन सकता है। तो आप जहां भी हैं कहीं पर भी हैं, आप जब चाहें जहां चाहें जिन आत्माओं के पास जाना चाहें वृत्ति के माध्यम से आप वहां पर पहुंच सकते हैं और वृत्ति के माध्यम से आप उन आत्माओं की दृष्टि को सृष्टि को परिवर्तन कर सकते हो। लेकिन आपकी वृत्ति में उन आत्माओं के प्रति कल्याण की भावना हो, शुभ भावना शुभ कामना हो। और आगे बाबा ने कहा कि हाँ आपकी वृत्ति जो है वो रॉकेट से भी तेज है वृत्ति, तो वृत्ति जो है वो रॉकेट से भी तीव्र गति वाली है। तो बाबा कहते हैं विश्व का कल्याण करना है तो आपका संकल्प आपका बोल आपकी स्थिति बेहद की हो, सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की भावना हो। यदि कोई आत्मा कोई गलती करती है तो उसको बदलने के लिए प्रयास करते हैं सोचते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि जिस आत्मा की वृत्ति में नेगेटिविटी होगी या आपकी वृत्ति में नेगेटिविटी होगी तो आप दूसरों के नेगेटिव वृत्ति को पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकेंगे। दूसरा पैराग्राफ है, बाबा ने एग्जांपल दिया जैसे कि यज्ञ की स्थापना के समय में साधन कम नहीं थे, साधन बहुत थे, लेकिन उस समय बेहद के वैराग्य वृत्ति का वातावरण था। साधन होते हुए भी हर आत्मा बेहद के वैराग्य वृत्ति में थी। 14 वर्ष जो भट्टी की उस समय बेहद वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल था। तो बाबा ने अभी भी आपको साधन बहुत दिए हैं, साधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन साधन होते हुए भी आपके दिल में बेहद का वैराग्य हो तो बेहद के वैराग्य से आप संसार की आत्माओं की सेवा कर सकेंगे। इसमें बाबा ने कहा कि आपके बेहद के वैराग्य वृत्ति ही पावरफुल वायुमंडल बनाएगी जिससे आत्माओं में परिवर्तन आएगा, और बेहद की वैराग्य वृत्ति अगर नहीं होगी तो आत्माओं में वो वैराग्य की भावना नहीं आएगी। आत्माओं संसार में आत्माओं में जो अशांति है दुख है बेचैनी है परेशानी है उससे छुड़ाने के लिए पहले आपके अंदर बेहद वैराग्य वृत्ति की भावना हो, तभी आप उन आत्माओं को उनसे छुड़ा सकेंगे। आगे बाबा ने कहा कि आप बच्चों को 2 प्रकार के कार्य करने हैं, एक तो आत्माओं को योग्य और योगी बनाना है और दूसरी बात प्रकृति को, धरनी को या प्रकृति को परिवर्तन करना है। तो आत्माओं को योग्य और योगी बनाना है, और दूसरी बात धरनी को परिवर्तन करना है। उसके लिए कहा बाबा ने कि आपकी वृत्ति में पॉजिटिविटी हो, तो आपकी वृत्ति में पॉजिटिविटी होगी तो उससे धरनी परिवर्तन होगी। हाँ, तो बाबा ने कहा कि आपकी वृत्ति के इसके लिए आपको दो कार्य करने हैं, वाणी के साथ साथ वृत्ति को भी बहुत तीव्र गति देनी पड़ेगी, दोनों उससे साथ साथ सेवा करनी है। तो आगे बाबा ने इसमें कहा कि आपके बोल और बोल कर्म और वृत्ति से हल्केपन का अनुभव हो, ऐसे नहीं कि मैं तो हल्का हूं लेकिन दूसरे मेरे को समझते नहीं है, पहचानते नहीं। बाबा ने कहा यदि दूसरे आपको नहीं पहचानते तो आप अपनी विल पावर द्वारा उनको अपनी पहचान कराओ, 95% सबके दिल पसंद बनो, 95% आपके कर्म वृत्ति उसको परिवर्तन करें। तो आगे बाबा कहते हैं कि अगर आपकी वृत्ति में श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना है तो सेकंड के संकल्प से दृष्टि से अपने दिल के मुस्कुराहट से सेकंड में भी किसी को बहुत कुछ दे सकते हैं। जो भी आपके सामने आए उसको कोई ना कोई गिफ्ट दो, खाली हाथ ना जाए। उससे पहले का एक पैराग्राफ है, तो बावन का वर्तमान समय संसार में भ्रष्टाचार और अत्याचार है। तो इस संसार में जो भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि है, तो बावन का आप बच्चों के अंदर कौन सी अग्नि होनी चाहिए? लगन की अग्नि, ज्वालामुखी योग की लगन की अग्नि। तो आपके ज्वालामुखी योग की जो लगन की अग्नि है वो उस अग्नि को समाप्त करेगी। तो यहां बाबा कहते हैं कि इससे दो बातें होंगी, एक तो संसार में जो आत्मा के अंदर जो अग्नि है भ्रष्टाचार की या अत्याचार की वो समाप्त होगी, दूसरी बात आत्माएं बाप के समीप आएंगी, आत्माओं के अंदर बाप के समीप आने की इच्छा होगी। इसके लिए बाबा ने कहा कि अपने दृष्टि की और वृत्ति को शुद्ध बनाओ, और उसका मूल फाउंडेशन है जो संकल्प शक्ति है, उस संकल्प शक्ति को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ और पावरफुल बनाओ। और आगे लास्ट पैराग्राफ है, हर व्यक्ति को हर बात को पॉजिटिव दृष्टि से देखो सुनो बोलो। तो जो रोब या क्रोध आता है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आप मास्टर स्नेह के सागर हो, तो आपके अंदर हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना होनी चाहिए। कोई कैसे भी आत्मा है, सारा संसार चाहे आप पर क्रोध करे, लेकिन आपको क्या करना है, मास्टर प्रेम के सागर बनकर के रहना है, बेफिक्र बादशाह बनकर बेपरवाह बादशाह बनकर रहना है। तो भवन का जैसे साइंस के साधन कैसे भी रफ माल को अच्छा बना देते हैं, इसी प्रकार से आपके जो शुभ भावना शुभ कामना की जो वृत्ति है वो आत्माओं में परिवर्तन लाएगी। भवन का आपका मन और बुद्धि ऐसे शुद्ध हो जो नेगेटिविटी को टच ना करे, सेकंड में परिवर्तन हो जाए। तो ये कुछ बाबा के महावाक्य थे वृत्ति के ऊपर। ओम शांति।
ओम शांति। डबल विदेशी भाई बहनों से पर्सनल मुलाकात है। सभी अपने को शिकिल आदि समझते हो ना, कितने सी को प्रेम से बाप ने कहां कहां से ढूंढकर एक ही गुलदस्ता में डाले हैं। गुलदस्ता में आने से सभी रूहे गुलाब बन गए। रूहे गुलाब अर्थात अविनाशी खुशबू देने वाले, ऐसे अपने को अनुभव करते हो ना। सभी को यही नशा है ना कि हम बाप को प्रिय है। सभी कहता है कि मेरे जैसे प्यारा बाप को और को ही नहीं, जैसे बाप जैसा प्रिय और को ही नहीं, वैसे बच्चे भी कहेंगे, क्योंकि हर एक की विशेषता प्रमाण क्योंकि हर एक की विशेषता प्रमाण बाप को सभी से विशेष स्नेह है। नंबर बार होते हुए भी सभी विशेष नहीं है। बच्चों की मूल्य को सिर्फ बाप जाने और आप जानो, बाकी कोई नहीं जान सकता। दूसरे तो आप लोगों को साधारण समझते हैं, लेकिन आप कोटों में कोई और कोई में भी कोई हो। कोटों में कोई और कोई में भी कोई हो जिसको बाप ने अपना बना लिया। बाप को बनते ही सर्व प्राप्तियां हो गई। खजानों की चाबी बाप ने आप सबको दी है, अपने पास नहीं रखी। इतनी चाबियां हैं जो सबको दे दी है। यह एक मास्टर की ऐसी है जिसे जो भी खजाना में लगाओ और वो खजाना प्राप्त करो, इसमें कोई मेहनत नहीं। वैसे भी लंदन राज्य का स्थान है ना, प्रजा बनने वाले नहीं, सभी सेवा में आगे जाने वाले। जहां प्राप्तियां है वहां सेवा के सिवाय रह नहीं सकते। सेवा कम तो प्राप्तियां कम, प्राप्ति स्वरूप बिना सेवा के रह नहीं सकते। देखो आप लोग कहां कहां विदेश चले गए, देश छोड़ विदेश चले गए, फिर भी बाप ने विदेश से भी ढूंढ ढूंढ कर अपना बना लिए। कितने भी भागे फिर भी बाप ने पकड़ लिया। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। ड्रामा अनुसार आज जो कल चलने वाली अव्यक्त मुरली का रिवाइज, उसमें मेरे को प्रश्न उत्तर का मिला है, मगर आज का दिन आप सबको याद है, बड़ी दीदी का दिन है। मेरे को याद आता है शुरू में राजू भाई भी कई बार सुनाया, जो साकार मुरली में पहले प्रश्नोत्तर नहीं होता था, दीदी ने ही ये प्रश्नोत्तर निकालने का सिखाया। राजू भाई ये भी बताया था, सिंधी जो सीखा है दीदी से सीखा है राजू भाई ने, जो राजू भाई माना मुरली जो तैयार करता है, मुरली का टाइपिंग करता है। तो दीदी का मेरे इंक इंस्टेंट याद आता है, दीदी जब अमृत वेला योग, मैं तीन बातों से दीदी का बहुत प्रभावित हूँ। एक तो दीदी का अमृत वेला जो दृष्टि देती थी वो बहुत दिल को घायल करने वाली दृष्टि होती थी, बस बैठ जाओ और सब देह से न्यारा स्वतः ही हो जाते दीदी के सामने बैठते ही। और दूसरी बात, जो मेडिटेशन हॉल में जब मुरली चल रहा था, दादी मुरली सुनाई थी, उसके बाद दीदी साइड में बैठती थी वहां सिंगल सोफा पे, जैसे ही मुरली पूरा हुआ दीदी ऐसे भांड मारती थी जो प्रश्न का दादी भी कभी बोल नहीं सकती थी। माना दीदी इतना उस मुरली को, जैसा उसको कहेंगे मस्तानी जो नाचने वाली मुरली के ऊपर, एकदम परफेक्ट टीचर कहेंगे, परफेक्ट वो प्रश्न निकाले तो कोई सबको फेल कर देती थी। माना दीदी के अंदर ये अथॉरिटी जो आए थे कि मुरली को पूरा निचोड़ देती। इसलिए जब भी पहले शुरू में यज्ञ में जो पैसा फोस्ट से आता था, उनको जो मनी ऑर्डर जो आती थी उसका रिटर्न जवाब जो पत्र द्वारा भेजते थे, उसमें दीदी ने शुरू किया जो पत्र के पीछे ऐसा मिला, इतना ही नहीं, उस संडे की मुरली का पूरा प्रश्नोत्तर निकाल के वो भेजा जाता था। मतलब वो भी सिर्फ मिला उतना ही नहीं, ज्ञान रतन भी उनको मिल जाए। और मैंने एक बार एक भाई मधुबन वाला पुराना भाई मैं सुनाया, जब योग होता है 4 बजे का, ठीक 4:45 बजे पूरा होता है। ये तो क्या हुआ, उस दिन जो गीत बजाने वाला भाई था वो थोड़ा 2 मिनट ज्यादा बजा दिया, बजाए तो फिर पूरा हो गया योग। फिर बाद में दीदी ने उनको बुलाया, देखो आप 2 मिनट ज्यादा बजाए उसका कितना इफेक्ट पड़ता है। तो पहले से ही दीदी का जो कप होता था चाय, उसमें डाला हुआ होता है, माना यो लास्ट एंड गीत से पहले ही हुआ कमरे में। फिर दीदी का गर्म पानी बाल्टी में रखा हुआ होता है, आप 2 मिनट ज्यादा होने के कारण चाय ठंडा हो गए। ये सब माना दीदी की जो दिनचर्या है वो एक्यूरेट अलर्ट रहते थे दीदी। कोई भी मिलने के लिए आए तो दीदी का जो वार्तालाप होता था या दीदी से मिल लिया, वो कभी अपना जीवन में भूल नहीं सकता है। ऐसी दीदी की छवि थी, माना दीदी से एक बार मिला तो बस। मेरे याद है हम सेवादारी ग्रुप में थे, दीदी हम दीदी के साथ हमारा मना ग्रुप बैठी थी, दीदी ने एक ही शब्द बोला, मेरे कभी तक भूल नहीं सकता, आप सेवादारियों का मैं पाऊं दबाऊं। है सिंपल शब्द मगर एक दिल को छू लेने वाली बात थी। इस प्रकार दीदी का अनेक प्रकार का, जब दीदी आंगन में खड़ी हो गई, वहां लाइट जल रहा, कोई मधुबन वाला उधर से जा रहा, उसको बुला के बोलती थी, बाबू आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, यज्ञ का बच्चा नहीं है। माना यज्ञ के रक्षक और मस्तानीपन का जो है, और हर चीज की संभाल एक्यूरेट थी। और दीदी दादी की इतना अंडरस्टैंडिंग थी, दीदी डांट कुछ बोल दिया तो दादी प्यार करती थी, दादी कुछ बोल दिया दीदी प्यार करती थी, माना दोनों का लव एंड ला का बैलेंस रखते थे। इसलिए दीदी दादी दो होते हुए भी एक ही आत्मा बोल के ये गायन था। ओम शांति। प्रश्न मेथड जो अभी हम सुनेंगे कल का मुरली के, हेड संगम युग के दिन बड़े ते बड़े मौज बनाने के दिन है। 25/12/83 संगम युग और क्रिसमस की यादगार में क्या अंतर है? एक साइड में आप क्रिसमस ट्री रख लीजिए, एक साइड में कल्प वृक्ष। क्रिसमस ट्री की कहानी सुनाते, वृक्षपति बाप कल्प वृक्ष की कहानी सुनाते, बड़े दिन की अल्पकाल की खुशी, बुरे दिन खत्म होने की सदाकाल की खुशी। क्रिसमस ट्री को लाइट से डेकोरेट करते, यहां लक्की लवली आत्माओं की लाइट से कल्प वृक्ष का जगमगाते। और साथ में ये भी बोला था बाबा ने, उसमें व्हाइट फरिश्ते, व्हाइट और माइट के फरिश्ते से जगमग, वह हद के मौज बनाते, यहां बेहद बाप के साथ बेहद की मौज बनाते, वहां कुछ भी कान पान होता है, यहां आत्मा का भोजन व ब्रह्म भोजन खाते हैं। सेकेंड प्रश्न, कौन सा नशा लवलीन बना देते, कौन सा नशा है? ज्ञान का अमृत का नशा। संगम युग के बड़े दिन में उत्सव कैसे बनाते हैं? कैसे बनाते हैं? हाँ उत्सव। संगम पर रात को दिन बना देते हैं, अंधकार को रोशनी में बदल देते हैं। क्या था इसका अर्थ? रात को दिन बना देते हैं, वो तो है ही है। जब बाबा आता था यहां पूरा रात बिताते थे, सब लोग कोई सोते नहीं थे, उसको वहां दिन हो गए ना। वो तो सबसे बड़े थे, बड़ा सौगात क्या है? हीरो से मूल्यवान स्नेह का कंगन और ईश्वरीय जादू का कंगन। कंगन सब नशे वाली चीज होती है, जैसा सिख लोग होते वो कंगन डालते हैं तो उनको नशा चढ़ जाता है, हम सिख है ना, कड़ा। फर्स्ट ब्राह्मण आत्माओं का यादगार क्या है, लास्ट धर्म तक की निशानी है, क्या यादगार है? ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं वृक्ष की फाउंडेशन, सर्व आत्माओं के दादे परदादे। ये हिस्ट्री हॉल में क्लियर वहां नीचे बैठे हैं। मन की मौज क्या है? बेहद के दिन में बेहद के बाप से मिलने की मौज बनाते, बेहद का वैराग बेहद बेगमपुर के बादशाह बन जाते। बेहद के दिन में बेहद के बाप से मिलन की मौज मनाते, बेहद बेगमपुर के बादशाह बन जाते। सातवां, जब परिवार सेवा में वृद्धि होगी तो क्या हो? ये कब का बोला बाबा ने, 83 का, अभी प्रैक्टिकल चल रहा। दृष्टि दर्शन में बदल जाएगी, अंत में जो दृष्टि मिलेगी वह भक्त भक्ति में दर्शन शब्द में बदल जाएगी। डबल विदेशियों को विशेष नशा कौन सी है? ऊंचे ऊंचे देश की दीवार, धर्म की दीवार, नॉलेज की दीवार, मान्यताओं की दीवार, रसम रिवाज की दीवारें सब पार करते आ गए। गुलदस्ता में आकर आप सब क्या बन गए? रूहे गुलाब, बाप के विशेष स्नेही, मूल्यवान, कोटों में कोई, बाप ने अपना बना लिया, बाप ने अनेक खजानों का मास्टर बना दिया है। दसवां, माया के विधाई देने वालों की निशानी क्या है? कल था ना मुरली, कल क्लास था ना, माया मासी चाय पिला देते। सदा संतुष्ट मणि, स्वयं भी संतुष्ट, सेवा में भी संतुष्ट, संपर्क संबंध में भी संतुष्ट, तीनों प्रकार के चाहिए। ग्यारहवा, भक्ति का फाउंडेशन कब और कैसे पड़ता है? संगम युग पर पड़ता है, वह भक्त जागरण करते हैं, यहां ब्राह्मण जागते हैं। जो आप ज्ञान से करते उसे वह भक्ति से करते हैं, मनोभावना से। बारहवा, आत्माएं सुख शांति की अनुभूति कब कर सकती है? आप कराएंगे तो भी अनुभव नहीं होगा, जब तक आपके अंदर आपके वैराग वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुख शांति का अनुभव कर नहीं सकती है। आपके अंदर वैराग चाहिए। इसमें मेन बात है कि वैराग कब आ सकती है?
वैराग तो सब में है, लेकिन ज्ञान से वैराग है।
नहीं, ज्ञान भी कोई किसी के अंदर कम नहीं है, ज्ञान है, मगर ज्ञान के साथ साथ हमारे अंदर रियलाइजेशन हो, हमको कुछ नहीं चाहिए, उसके लिए हमारा पावरफुल अमृत वेले का योग का फाउंडेशन चाहिए, तभी हमारे अंदर वो वैराग वृत्ति का जागृत होगा। आप योग कर रहे, योग वह अमृत वेले में भी आया, बस निद्रा योग हो रहा, या उधर उधर बाजू में आके बैठे उनको देख रहे, इधर देख रहे, ये नहीं, वो लवलीन अवस्था में चले जाओ, बस एक बाबा मैं, दूसरा नहीं। एक बार अच्छी बात सचिन भाई ने सुनाया था, हॉल में हजारों लोग बैठे, लाखों लोग बैठे होंगे, मगर मैं अकेला बाप से प्यार कर रहा हूं, मैं अकेला ही हूं और कोई नहीं है। हाजी, वेद की वैराग वृत्ति के क्या क्या फायदे हैं? साधना का शक्तिशाली वायुमंडल बनाएगा, लगन की अग्नि ज्वाला रूप बनेगी, भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि समाप्त होंगी, सर्व आत्माओं को संयोग दे सकेंगे, आत्माओं को परमात्म संदेश दे सकेंगे, शीतल स्वरूप की अनुभूति करा सकेंगे, आत्माओं को योग और योग्य और योगी बना सकेंगे, बोल कर्म वृत्ति से हल्केपन का अनुभव करा होगा। सेकंड में किसी को भी बहुत कुछ दे सकते हो, सेकंड में किसी को भी बहुत कुछ दे सकते हो, क्योंकि अभी कोई भी ज्ञान दे तो ज्ञान सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, मगर आपकी वृत्ति यदि पावरफुल होगा, आपकी एक दृष्टि उसको आत्मा को सदा के लिए कल्याण करेंगे। आपकी व दूसरों की माया सहज भाग जाएगी। ओम शांति।
ओम शांति। इंस्टेंट मेथड 2-3 मिनट के लिए। इना बेन, रूहानी मिलिट्री।
ओम शांति। रूहानी मिलिट्री। सो बाबा बहुत बार साकार मुरली में हमसे कहता है कि हम रूहानी मिलिट्री है। क्यों कहता है? क्योंकि हम जैसे वो मिलिट्री वाले हमेशा अलर्ट रहते हैं, वैसे हम भी सदा अलर्ट रहते हैं। तो किससे अलर्ट रहते हैं? माया से अलर्ट रहते हैं। वो मिलिट्री वाले मॉर्निंग में आप देखेंगे तो एक्सरसाइज करते हैं, ड्रिल्स करते हैं, भागते हैं। तो उसी तरह से हम भी मॉर्निंग में अमृत वेला उठते हैं, बाबा को याद करते हैं, ड्रिल्स करते हैं। वो मिलिट्री वाले बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीते, तो वैसे ही हमारी भी दिनचर्या जो ब्राह्मण जीवन में बाबा ने हमको बताई है वो भी बहुत डिसिप्लिन लाइफ होती है। जैसे हम उठते कैसे, हमको खाना कैसे, हमको चलना कैसे, हमको बोलना कैसे, हमको क्या पहनना है, वो मिलिट्री वालों का यूनिफॉर्म होता है और बैच होता है। उसी तरह से बाबा ने संगम युग पे हम ब्राह्मण आत्माओं को साड़ी दी है, भाइयों को इजार कुर्ता दिया है, और हम भी बैच पहनते हैं। जैसे वो मिलिट्री वालों में आप लोगों ने देखा होगा कि उनके पास अलग अलग बैचेस होते हैं, है ना, जैसे उनकी रैंक वाइज होते हैं, जैसे वो प्रोग्रेस करते हैं। तो यहाँ पर भी हम बच्चों को भी अलग अलग बैचेस दिए हुए हैं, जैसे जो समर्पित है उनका अलग बैच है, भाइयों का अलग बैच है, बहनों का अलग बैच है। वो मिलिट्री वालों में एक नियम होता है कि अगर उनको ये मिला, ऑर्डर मिला कि जस्ट जाना है, तो वो बहुत ओबीडियंटली उस चीज़ को फॉलो करते हैं। उसी तरह से हमें भी बाबा कहता है कि हमेशा सेवा पे आपको तत्पर रहना है, हमेशा सेवा में हाजी करना है। ओम शांति। वही 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 लेस
जल्दी जल्दी। हर्षिता हर्षिता, वो आप बैठेंगे उसके बाद में टॉपिक देंगे, नहीं तो आप सोचेंगे ना तब
तक।
कख का चोर सो लख का चोर। एक मिनट, जल्दी जल्दी स्टार्ट।
ओम शांति। कोई और टॉपिक?
फाइनल।
कोई और?
तुरंत तुरंत सच्ची दिल पर साहेब दादी
सामने, आप सोचो बुद्धू बैठे हो जा रहे हैं।
नहीं सब बाबा के बहुत अच्छे बच्चे हैं, सच्चे दिल पर साहिब राजी। जो भी हम कर्म करते हैं अगर हम पूरे अच्छे दिल से पूरे मन से करते हैं तो बाबा भी उस पर खुश होता है। अगर मन शुद्ध है, संकल्प शुद्ध है, तो हमारे उन संकल्पों में हमें जरूर सक्सेस प्राप्त होती है।
एक मिनट नहीं हुआ है, 1 मिनट स्टार्ट। नहीं नहीं अभी
साहेब राजी कब होता है? जब हमारे कर्म बहुत अच्छे होते हैं, हम उनकी आज्ञाओं पर चलते हैं, जो बाबा रोज हमें श्रीमत देते हैं उस पर हम चलते हैं।
टाइम है बच्चे,
जितना देर रुकेंगे उतना पॉज हो जाएगा टाइम।
ये तो गलत है, टाइमिंग तो चलता रहना चाहिए। एक मिनट हो गया। ओम शांति।
दूसरी बहन जी बाजू वाले, सुनने की कला। एक मिनट
शांति। सुनने की कला, सुनने की कला। बाबा भी कहते कि मेरी श्रीमत पर चलो, चलेंगे तब जब हम केयरफुली बाबा को सुनेंगे। जब हम सुन रहे हैं मुरली तो हमारी मन और बुद्धि कहाँ है? बाबा भी कहते, अभी हमारे बड़े दीदी एक दिन में कुछ काट रही थी सब्जी, तो मेरे हाथ पे चाकू लग गया। दीदी ने मुझे नहीं, मेरे बड़े दीदी ने मुझे समझाया, मैं सब्जी काट रही थी, काटते काटते हाथ पे कुछ लग गया। दीदी ने कहा इस घड़ी तुझे बाबा भूल गए थे। तो जब हम मुरली सुन रहे होते हैं उस टाइम भी हमारी बुद्धि, मन और बुद्धि कहीं ना कहीं इधर उधर होती है, और कुछ ना कुछ पॉइंट हमारी बुद्धि से निकल जाता है। तो जब हम मुरली सुनने भी बैठते हैं तो हम एकाग्र होके बाबा कहते हैं बच्चे एकाग्र होकर बैठो, एकांत में बैठो, मुरली सुनते हुए भी एकांत में बैठो। क्यों? क्योंकि मैं और बाबा और कोई नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, अभी तो आप सभी महारथी सामने बैठे हैं, हम लोग तो बहुत छोटे बच्चे हैं, लेकिन जितना हमने अभी तक देखा है, जब हम, मैं अपना भी बताती हूँ, मैं मुरली सुनने बैठी, कोई ना कोई पॉइंट अगर ऐसा होता है तो ऐसे चाहता है ये ना उस पर है, हम ये नहीं, हाँ उसके लिए कहा जा रहा है, हम ये नहीं लेते कि ये बाबा मुझे कह रहे हैं, या तो मुझ में ये क्वालिटी है मैं उसे बढ़ाकर इस पर सक्सेस ले सकती हूँ, या मुझे बाबा इंडिकेट कर रहे हैं कि बच्चे तुझे ये बनना है। हम शांति।
ब्राह्मण जीवन इवाटे पर मन्मत परमत श्रीमत, टॉपिक है ब्राह्मण जीवन तिवाटे पर मन्मत, तिवाटे अर्थात तीन रास्ते, मन्मत परमत श्रीमत।
ओम शांति। ब्राह्मण जब हम बनते हैं तो भगवान की हमें श्रीमत मिलती है, लेकिन उस श्रीमत को पालन करने में हमारी सबकी बहुत वैरायटी रहती है, कि कभी हम मन्मत पर चल पड़ते हैं कि हमारे पुराने संस्कार कई बार सामने ऐसे प्रबल होते हैं, या हमारे कोई ऐसे अनुभव जो हमें नई जो श्रीमत मिल रही है उसको अप्लाई करने में कई बार हमें रिजिडिटी दिखाते हैं और हम इजी फील नहीं करते हैं श्रीमत पर चलने पर। जैसे कहते हैं कि जो रास्ता सच में अच्छी मंजिल पर हमें लेके जाता है आत्मा की प्रोग्रेस की तरफ, या दुनिया में भी कहते हैं कि वो रास्ता पहले मुश्किल दिखाई देगा, तो ऐसे ही श्रीमत मतलब न्यू चीज को अप्लाई करने में कई बार हमें एक हर्डल लगता है अंदर में, तो हम वहीं पर मन्मत को अप्लाई कर लेते हैं, वो इजी लग रहा होता है उसको ओबे करना, लेकिन वो हमें अवनति की तरफ लेकर के जाता है। और परमत, दूसरों के साथ जो भी हमारे पहले पुराने अनुभव होते हैं या दूसरों की बातें हमें ज्यादा प्रभावित कर देती हैं, भगवान का उतना प्रभाव नहीं पड़ रहा, दूसरी आत्माओं के ओपिनियन ज्यादा हमें इफेक्ट करते हैं, तो हम उनकी भी राय लेकर के भगवान की बात को भी डिनाई कर देते हैं। तो इस तरह ब्राह्मण जीवन में हम बीच में खड़े हैं, चलना तो श्रीमत पर है लेकिन कहाँ कहाँ डेविएशंस हो जाती हैं, मन्मत और परमत को फॉलो करते हैं तो आत्मा अपनी मंजिल से उतना ही दूर दूर दूर।
ओम शांति। टॉपिक है कख का चोर तो लख का चोर। कख का चोर माना जो एक रुपया चोरी करता है, चोरी तो चोरी है, चाहे आप एक रुपये की चोरी करो चाहे हजार रुपये की चोरी करो। तो उसी प्रकार जैसे बाबा कहते हैं कि बाबा हमें श्रीमत देते हैं, अगर हम किसी भी श्रीमत की पालना नहीं करते हैं तो ये बात हो जाती है कि हम किसी भी श्रीमत को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि कख का चोर मतलब एक चीज गलती की हमने, तो वो गलती जो है बाकी की गलतियों को भी अपनी तरफ खींच सकती है, या वो गलती बाकी की गलती में भी काउंट हो सकती है। जैसे अगर किसी ने एक कर सकते हैं, जैसे अगर किसी ने एक मर्डर किया तो उसकी सजा भी फांसी है, और दस मर्डर किया तो भी उसकी सजा फांसी है। तो ये एग्जाम्पल है कख का चोर सो लख का चोर, मतलब चोरी चोरी में ही है, चाहे वो एक रुपए की चोरी हो चाहे हजार रुपए की चोरी, भले दोनों का पनिशमेंट अलग अलग है, एक रुपए की चोरी को लोग छोड़ भी सकते हैं, अगर कोई बड़ी चोरी करे तो उसका उसके उतना पनिशमेंट मिलेगा उसको। तो कहने का भाव ये है कि हम कोई भी गलती करते हैं तो ये ना समझे कि भाई ये गलती हमारी छोटी है चल जाएगी, और उसकी गलती बड़ी है वो तो वो नहीं चलेगी, आदत बनती जाती है और हर गलती की सजा तो हमें मिलेगी। हम अपने आप को सांत्वना देते कि कोई बात नहीं छोटी सी बात है चल जाएगा करके, लेकिन वो चलता नहीं है, वो हर एक गलती की सजा हमें जरूर मिलती है। ओम शांति।